بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا ہے ہم لوگ عالم ارواح میں تھے وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے عالم برزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا اور اس کے بعد پھر جنت یا جہنم تو ہمارا دائمی اور پرمننٹ گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے اور یہ دنیا ہمارا عارضی گھر ہے ٹیمپوریری گھر اور ٹیمپوریری گھر کو مسافر خانہ کہتے ہیں اور جو مسافر خانے میں ہوتا ہے وہ مسافر ہوتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب تم دنیا میں رہو گویا کہ تم مسافر ہو ایک مسافر جس طرح وطن سفر میں رہتا ہے تو اسی طرح تمہیں دنیا میں رہنا چاہیے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی مسافر سفر میں ہوتا ہے تو وہ اپنی راحت کا بھی خیال کرتا ہے اپنے آرام کا بھی خیال کرتا ہے اپنے کھانے پینے کا بھی خیال کرتا ہے اپنے پہننے اوڑھنے کا بھی خیال کرتا ہے مگر اتنا جو بقدر ضرورت ہو نمبر ایک اور نمبر دو ایسا خیال کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اصل وطن میں نقصان میں نہ پڑ جائے مثال کے طور پر اگر کوئی کھانے کی چیز مل رہی ہے اور وہ 20 پاؤنڈ کی ہے تو وہ خرید لے گا اگر دکاندار اسے یہ کہے کہ آپ یہی چیز اگر بڑی مقدار میں لیں گے تو آپ کو میں ڈسکاؤنٹ دے کر 5-5 پاؤنڈ میں دے دوں گا تو وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ چیز جو 20 پاؤنڈ میں میں خرید رہا ہوں ابھی اگر مجھے 100 نسخے اس کے 100 حبے اس کے 100 ننگ اس کے 5-5 پاؤنڈ میں مل جائے تو وہ اس میں سے زیادہ میں تو 2 یا 3 یا 4 کو استعمال کروں گا باقی بگڑ جائیں گے اسی لے کر میں کیا کروں گا فرنیچر ہے فرنیچر اگر اسے وہ فرنیچر جو اس کے شہر میں 500 پاؤنڈ میں مل رہا ہے اگر 50 پاؤنڈ میں مل جائے تو وہ یہ سوچے گا کہ 50 پاؤنڈ میں اسے خرید کر اپنے ساتھ تو لے نہیں جا سکوں گا میں جب اپنے وطن میں جانا شروع کروں گا تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے تو اسے خرید کر کیا کروں گا تو جو کچھ بھی وہ خریدتا ہے جو کچھ بھی لیتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنی آخرت کا سوچتا ہے اپنے اصل وطن کا سوچتا ہے تو اسی طرح ہم اس دنیا میں ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر بن کر رہو یعنی کرو یہاں کی راحت کے لیے بھی کوشش کرو یہاں کے آرام کے لیے بھی کوشش کرو یہاں کے کھانے پینے کے لیے بھی کوشش کرو مگر اس کا خیال کرو کہ یہاں کی راحت یہاں کا آرام یہاں کی عیش کی وجہ سے آخرت کی عیش آخرت کا آرام اور آخرت کی راحت برباد نہ ہو جائے کن فی الدنیا کأنک غریب اور آگے فرمایا کہ نہیں مسافر کی طرح نہیں او عابر سبیل یا راہ گزر کی طرح غریب مسافر کو کہتے ہیں اور عابر سبیل راہ گزر راستے میں گزرنے والا دونوں میں فرق کیا ہے مسافر اس کو کہتے ہیں غریب جو کسی جگہ جا کر ایک دن دو دن ٹھہرتا ہے جیسے لوگ دبئی جاتے ہیں 2 ہفتے کے لیے یہ مسافر ہیں اور اگر کوئی عمرے کے لیے جاتے ہوئے دبئی سے ٹرانزٹ سے گزرتا ہی عابر سبیل ہے تو جو دبئی جا کر 2 ہفتے ٹھہرتا ہے وہ تو کچھ بھی خریدتا ہے وہ تو کچھ بھی رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے مگر جو عابر سبیل ہوتا ہے ट्रांजिट का पैसेंजर जो 6 घंटे 7 घंटे एयरपोर्ट पर ठहरने वाला होता है वो होटल बुक नहीं करता। क्यों भाई? कि कोई बात नहीं, थोड़ी मशक्कत बर्दाश्त कर लेंगे, 7-8 घंटे तो है, खामखा हमारे 50 पाउंड चले जाएंगे, खामखा 100 पाउंड चले जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में तो मुसाफिर की तरह रहो, नहीं बल्कि राह गुजर की तरह रहो। यानी मतलब ये कि दुनिया में रहते हुए दुनिया के कामों में कम से कम खर्च करो, उतना ही खर्च करो जितनी जरूरत है, बाकी अपनी आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह भी तौफीक अता फरमाए। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते वो अपने शागिर्द के कंधे पर हाथ रखकर फरमाते थे कि इदा अमसैत फला तंतज़िर अस्सबाह व इदा असबहत फला तंतज़िर अलमसा, जब तू सुबह को उठे तो शाम का इंतजार मत करना, और जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार मत करना। तो देखो आबिर सबील है कि नहीं, ट्रांजिट ही है। अगर मेरा कल इंतकाल होने वाला है तो मैं मुसाफिर कहां हूं, मैं तो ट्रांजिट में हूं, मेरे तो अब 24 घंटे भी नहीं रहे, तो मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। तो दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करनी है जी, आखिरत की फिक्र करनी है। हमें देखना यह है कि दुनिया की राहत और दुनिया के आराम के लिए हम जितनी फिक्र करते हैं इतनी ही फिक्र हमारी आखिरत के लिए है। अगर दुनिया के लिए हम 100% मेहनत कर रहे हैं 100%, तो आखिरत के लिए कितनी कर रहे हैं? हर शख्स सोचे अपने बारे में, मैं अपने बारे में सोचूं, मैं मेरी ये ख्वाहिश है कि दुनिया में इज्जत के साथ रहूं। अच्छा भाई, इज्जत के साथ रहने के लिए कुछ करना पड़ता है कि मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वरना जिल्लत हो जाएगी। तो इज्जत की हिफाजत के लिए आदमी जो है वो अलर्ट रहता है, अटेंशन के साथ रहता है कि मैं कोई गलत काम ना करूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मालदार रहूं, मेरे पास इतने पैसे रहे कि मुझे किसी के सामने जिल्लत का हाथ न फैलाना पड़े, मोहताजी ना हो। अच्छा, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, कितनी कर रहा हूं। मेरी ये ख्वाहिश है कि पनाह के लिए कोई घर होना चाहिए। भाई कैसा घर होना चाहिए? तो जहन में एक नक्शा है कि ऐसा घर होना चाहिए, अब उसके लिए कोशिश है। पहले किराए के घर में जाता है, काउंसिल के घर में जाता है, एक सस्ता घर खरीदता है, फिर बचत करके और बड़ा घर खरीद, एक जहन में उसके लिए मेहनत होती है। मेरी ये चाहत है कि मैं हर साल हॉलीडे के लिए जाऊं, तो उसके लिए कोशिश होती है कि इस तरह बजट बना करके सेविंग करना पड़ेगा। दुनिया में जो कुछ हमारी ख्वाहिशात हैं उनको पूरी करने के लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हर शख्स को सोचना यह है कि उसके मुकाबले में आखिरत के लिए हमारी कितनी मेहनत है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आखिरत के मामले में सिवाय इसके कि एक जनरल ऑब्जेक्टिव जहन में है, एक आम मकसद कि मुझे आखिरत में जन्नत में जाना है, इसके अलावा बाकी वहां के लिए तो कोई उमंगे नहीं कि जन्नत भी मिले तो जन्नत और फिरदौस होनी चाहिए, और जन्नत में दाखला मिले तो अंबिया और शोहदा और सिद्दीकीन के साथ होना चाहिए, और अल्लाह का दीदार हो तो बहुत रोजाना होना चाहिए, और अल्लाह मुझे कयामत के दिन ये कहे थे कि मेरे बंदे तू मुझे खुश करके नहीं बहुत खुश करके आया है। वहां के लिए कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं, दुनिया के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, इसलिए मेहनत भी होती है उस लाइन की, आखिरत के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं। हालांकि वो सफर जो हमारा वो एक सफर होने वाला है, वो दुनिया में हम मुसाफिर हैं, वो सफर होने वाले बहुत लंबा सफर है, वो बहुत लंबा। तो अर्ज करने का मंशा यह है कि पहली बात यह है कि ये दुनिया आरजी जगह है, वो परमानेंट जगह है। आरजी जगह के लिए जितनी हमें फिक्र है उससे परमानेंट जगह और दायमी जगह की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। एक बार इस रवैये को बदलो, मुहासबा करो मेरे भाइयों, अपना मुहासबा करो। ऐसे ही सुनकर के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ी देर तनहाई में जाकर सोचो कि हमारा रवैया क्या है, और इस रवैये को बदलने की कोशिश करोगे। आखिरत की फिक्र दुनिया की फिक्र से ज्यादा, यानी मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की फिक्र कम कर दो, चलो जिस दुनिया के पीछे आप मेहनत कर रहे हो आपके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 300 कमा रहे हैं और 400 की कोशिश है तो 300 पर ही रहो, चलो 400 कमाओ 500 कमाओ, मगर ये अर्ज कर रहा हूं और मैं बजा हूं इस बात को कहने में, इससे कि हर मुसलमान ये समझता है कि आखिरत परमानेंट है, दुनिया टेम्पोरेरी है, टेम्पोरेरी के लिए जितनी मेहनत होती है उससे ज्यादा मेहनत परमानेंट लाइफ के लिए होनी चाहिए। दुनिया का कोई अकलमंद इसका इनकार नहीं कर सकता। तो सोचो इसको कि मेरी आखिरत के लिए कितनी फिक्र है, पहली बात ये। दूसरी बात, हम जब दुनिया में सफर करते हैं तो तीन दिन का यूरोप का सफर होता है, उसके लिए भी कितनी तैयारी, भाई टॉयलेटरीज की बैग रखी कि नहीं, दो जोड़ी कपड़े मेरे रखे कि नहीं, मेरी दवा रखी कि नहीं, टिकट बुक कराते हैं कि टिकट बुक हुई कि नहीं, बगैर टिकट बुक कराए कोई नहीं जाता एयरपोर्ट पे, फिर यहां से एयरपोर्ट तक का सफर, फिर ये कि कितने बजे निकलना है, वक्त पर पहुंचना चाहिए, मालूम करो कि कोई ट्रैफिक है कि नहीं, रोड वर्क है कि नहीं, मेरा सफर बहुत अहम है, वक्त पर जाते हैं, चेक इन कराते हैं, फ्लाइट उसके टिकट के पैसे कितना एहतमाम, वहां जाने के बाद भाई होटल अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मुझे जहां कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाना है वो करीब हो, रिश्तेदारों को इत्तला करो कि मुझे लेने के लिए आए, कितना ज्यादा एहतमाम होता है। और अगर लंबा सफर हो, जैसे इंडिया का एक महीने का दो महीने का उम्रे हज के लिए सफर हो, तो उसके लिए और तैयारियां बढ़ जाती हैं। तो हजरत मौलाना अबरारुल हक साहिब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए किस कदर परेशानियां होती हैं, पासपोर्ट लो, वीजा लो, फिर कहां कहां भागना पड़ता है, फिर हेल्थ सर्टिफिकेट लो कि कोई वबाई बीमारी का मरीज तो नहीं है, बाज मुल्कों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो जब दुनिया के छोटे से सफर के लिए इतनी ज्यादा तैयारियां हैं, तो सोचो कि आखिरत का सफर कैसा होगा, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क का नहीं बल्कि एक आलम से दूसरे मुल्क का सफर है, उसके लिए किस कदर तैयारी करनी चाहिए। एक आका था, उसका एक गुलाम था, वो बेवकूफी के काम करता रहता था, तो आका ने उसे एक बहुत खूबसूरत लाठी दी और ये कहा कि ये तेरी बेवकूफी का इनाम है, और तू जब तुझसे ज्यादा किसी दूसरे बेवकूफ को देखे तो ये तू अपनी तरफ से उसे इनाम दे देना। बहुत अच्छी बात, ले लिया उसने, था तो बेवकूफ ही। कुछ दिनों के बाद वो आका बीमार हो गया, बीमार हो गया, डॉक्टरों ने ये कहा कि अब तू ठीक होने वाला नहीं है, तो सबसे माफी वाफी मांग रहा था, तो उसने अपने गुलाम को भी बुलाया कि इस बिचारे को मैंने बहुत सताया है, तो उसने कहा कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूं अब। कहां जा रहे हैं आप? कि सफर पे। कि कहां का सफर है? कि बहुत लंबा सफर है। अच्छा, फिर वापस कब आएंगे? तो कि ये मेरा सफर ऐसा है कि वहां से वापस नहीं आऊंगा। कहा अच्छा, तो सफर की कोई तैयारी आपने की है कि नहीं? आप तो छोटे मोटे सफर करते थे तो दो तीन हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी और पता चल जाता था यहां सबको कि आपका सफर है, और आप कह रहे हैं कि आपका सफर है बहुत लंबा सफर है और ऐसी जगह का सफर है कि जहां से वापस आना नहीं है, तो आपने कोई तैयारी की है या नहीं? तो कहा कि नहीं, तैयारी तो मैंने कोई नहीं की है। तो उसके लिए सवारियां, कि सवारियां भी नहीं है, रास्ते के लिए तोशा, कि तोशा भी नहीं है, कि वहां इस्तेमाल करने के लिए जरूरत की चीजें, कि वो भी नहीं है। तो गुलाम कमरे से बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद वो लकड़ी लेकर आया और कहा कि हुजूर, ये आप ही को मैं दे रहा हूं, इसलिए कि आपसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई नहीं मिलेगा। कि दुनिया के छोटे छोटे सफर आप करते थे उस वक्त इतनी सारी तैयारियां, और आज अब सफर कर रहे हैं कि इसी जगह का जहां हमेशा रहना है, जहां वापस आना नहीं है, और उसके लिए कोई तैयारी नहीं की है, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? तो ये एक हिकायत है जो सुनाई जाती है, मगर इससे हमें समझना यह है कि कहीं मैं भी उसी आका जैसा बर्ताव तो नहीं कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। कल अगर मलकुल मौत आ जाए और कहे कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, और आखिरत का मंजर हमारे सामने खुल जाए, तो हम में से हर शख्स ये कहेगा कि जरा मुझे मोहलत दे दीजिए, जरा मोहलत दे दीजिए, जरा मोहलत दे दीजिए। इसका मतलब है कि हम तैयार नहीं, और मोमिन आखिरत से डरता इसलिए है कि तैयार नहीं। अगर मोमिन तैयार होता तो आखिरत से बिल्कुल न डरता, बिल्कुल न डरता। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि मलकुल मौत अगर आपकी रूह कब्ज करने के लिए आए तो आप किस हालत में उसका आना पसंद करेंगे? सज्दे की हालत में पसंद करेंगे, क्याम की हालत में पसंद करेंगे, तहज्जुद में पसंद करेंगे, उमरा करते हुए किस हालत में मलकुल मौत का आना पसंद करेंगे? मैं अगर आप हजरत से अभी पूछूं तो कोई कहेगा कि रोजे की हालत में, कोई कहेगा कि इस हाल में कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूं, कोई कहेगा सज्दे की हालत में, कोई कहेगा तहज्जुद की हालत में, हर शख्स अपनी अपनी बात कहेगा, कोई कहेगा कि काबी का गिलाफ पकड़ने की हालत में। तो क्या आप किस हालत में चाहते हैं कि मलकुल मौत आए? तो उन्होंने जवाब में यह कहा कि मलकुल मौत जिस हालत में भी आ जाए मैं राजी हूं, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह बना लिया है कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। तो जिस वक्त भी वो आ जाए मैं बिल्कुल तैयार हूं, जिस वक्त भी वो आएगा वो मुझे ऐसा काम करता हुआ पाएगा जिस काम से मेरा अल्लाह राजी है, नाराज नहीं है, जिस हालत में भी वो आ जाए मुझे कोई हर्ज नहीं। तो जब वो मेहनत कर सके तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो करो, फिक्र करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सब दोस्तों को भी तौफीक दे, हमारे सब मुतालिकीन को तौफीक दे, अल्लाह ताला पूरी उम्मत के मुसलमानों को तौफीक दे, पूरी दुनिया के इंसानों को तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम सबको उसकी मर्जियात पे चलाए और उसकी मर्जियात पे मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।